Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kaivalya Upanishad, presented by Swami Sri Dharmanandiji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Kaivalya Upanishad ke pratham adhyay ka 16va mantra hai. Pehle uchcharan. यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्य आयतनम् महत् सूक्ष्मान् सूक्ष्मातरम् नित्यम् तत् त्वमेव त्वमेव तत् यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्य आयतनम् महत् सूक्ष्मासूक्ष्मातरम् नित्यम् तत्त्वमेव त्वमेव तत्। उस परमात्मा का यहां वर्णन चल रहा जो तत्पद का शोधित अंश है, जिसको लक्ष्यार्थ कहते। त्वम पद का वाच्यार्थ जीवात्मा, वाच्यार्थ जानते हैं ना, वाच्यार्थ मतलब जिस शब्द को सुनने के बाद जिस अर्थ की नियमतः प्रतीति हो उसका नाम है वाच्यार्थ। जैसे हमने कहा कि पंच नाव संति, तो इसका पंच मतलब पांच, नाव मतलब जो गंगा जी में चलती है, तो पांच का पांच नाव का अर्थ नाव संति, ये हो गया वाच्यार्थ। जैसा कहा वैसा सीधा। और हम यदि इसी को बोले गंगायाम नाव, गंगा जी में नाव है, तो अब यहां पर जो गंगा शब्द है, गंगा शब्द का अर्थ होता है भागीरथ खाता वचिन जल प्रवाह। गंगा मतलब भागीरथ खाता वचिन जल प्रवाह। भागीरथ ने जो तपस्या किया, इनके पूर्व में दो पीढ़ी तपस्या कर चुकी। भागीरथ के पहले कौन थे? दिलीप थे, दिलीप। दिलीप के पहले अंशुमान। तो तीन पीढ़ी तपस्या की, इसके बाद भागीरथ महाराज का जो रथ चला, उस भागीरथ के रथ के चलने से जो खात मतलब जो गड्ढा बना, उसके पीछे जो जल का प्रवाह, उसका नाम गंगा। ये तो हो गया वाच्यार्थ गंगा का। परंतु यहां गंगा शब्द का जो है वाच्यार्थ, भले भागीरथ खाता व छिन्न जल प्रवाह हो, पर अर्थ नहीं घट रहा, इसलिए लक्षणा करना पड़ेगा। क्योंकि गंगा में झोपड़ी ठहर नहीं सकती, तो गंगा शब्द का गंगा तीर में लक्षणा करेंगे। गंगा शब्द का गंगा तीर। और भी आपको सरल बताता हूं, ये पुराने जमाने का थोड़ा हो गया ना। किसी को हमने कहा सिंह पुरुष है, सिंह पुरुष का, तो सिंह पुरुष में जो सिंह शब्द है ना, ये लाक्षणिक है। सिंह शब्द का वाच्यार्थ है कि जंगल में रहने वाला एक जो क्रौर शौर्य पराक्रम हिंसक जानवर। पर यहां जो सिंह पुरुष कहा, या ये ब्रह्मचारी सिंह के समान है, सिंह शब्द लक्षणा। लक्षणा हम करें कि जैसे शेर बहुत पराक्रमी है, क्रूर है, सूर है, तेज तर्रार है, ऐसे ये ब्रह्मचारी है। उसका लक्षणा किसी में होगा? पराक्रम में, शौर्य में, तेज तर्रार में, वह सिंहकार ऐसा नहीं कि जंगल के दरे भी खा जाएगा, ऐसा नहीं। एक बार 2004 के कुंभ में बेबलिन महाराज, श्री विद्यानगिरी महाराज, कोई तारीफ कर रहा है। तारीफ में कई बार होता है ना, आदमी अति कर देता, और मेरे को अति करना भी नहीं आता, सुनना भी अच्छा नहीं लगता। तो वो महात्मा थे कमलनाथ सागर जी ठाकुर, उन्होंने अति कर दिया कि देखो हमारे महाराज कैसे सिंह शेर, और सब क्या है यहाँ जो कुंभ में महापुरुष गाय के समान है। हमने कहा भाई ये तो अति, तो बाद में हमने टिप्पणी किया कि शेर तो बड़ा हिंसक जानवर है, क्रूर है, तो महाराज जी क्या किसी की हिंसा करते। और उनका तात्पर्य था कि पराक्रम शोर में, तो जो सिंह शब्द बोला उन्होंने महाराज की, तो तात्पर्य ऐसा नहीं सिंह की तरह वो भी हिंसा करते, मृग को भक्षण करते, उसका लक्षण आया मतलब पराक्रम में, शूरवीरता में, इसको बोलते हैं लाक्षणिक। और सिंह शब्द का जंगली जानवर करेंगे तो उसका नाम वाच्यार्थ हो जाएगा। ऐसी त्वम पद का वाच्यार्थ है ये शरीर 3.5 हाथ का, जिसको आप जीवात्मा कहते, जीवात्मा चिदाभास। सामान्य आदमी वो जल्दी वो भी नहीं समझता है जीवात्मा चिदाभास, वो तो शरीर को ही आत्मा समझता। त्वम मतलब तुम, हिंदी में बोलते हैं त्वम का अर्थ क्या, तुम, अहम का मैं। पर इसी का शोधन करते करते त्वम पद का शुद्ध अर्थ लक्ष्यार्थ जो कुटस्थ है आत्मा, ऐसे तत्पद का वाच्यार्थ है ईश्वर। ईश्वर का अर्थ जानते ना आप लोग? हाँ बिल्कुल ठीक, ईश्वर मतलब कि माया के चादर को जो ओढ़ कर बैठ जाए उसका नाम ईश्वर, माया उपाधि है। और जीव की उपाधि है अंतःकरण या अविद्या, अविद्या में माया में थोड़ा थोड़ा अंतर है। शुद्ध सत्व प्रधान को माया कहते हैं, और मलिन सत्व प्रधान का नाम है अविद्या। तो ईश्वर की उपाधि है माया, उसी को हम परमात्मा कहते, भगवान कहते, ब्रह्म नहीं कह सकते उसको ब्रह्म। ये बात अलग की मोटी माटी भाषा में कहते समझने के लिए, ये दूसरी बात है। तो जो माया उपाधि वाला चैतन्य है, समझने के लिए जैसे गंगा जी है, तो गंगा जी में जल प्रवाह प्रवाहित हो रहा, और उसी गंगा जी में से हजार बर्तन में एक एक लोटा गिलास बाल्टी जल निकाल लिया, तो है तो दोनों गंगा ही, परंतु दोनों में अंतर है। गंगा जी की जो उपाधि है बहुत बड़ी है, गोमुख से लेकर गंगा सागर तक, उनको भी गंगा ही कहते, और एक लोटे जल में उसका नाम भी गंगा। गंगा तीन दोनों गंगा है, परंतु अंतर उपाधि का आ गया। नदी में नावें चल सकती हैं, तैर सकते, गोता लगा सकते, मछलियां भी तैरती हैं, हाथी भी नहा लेता, परंतु ये जो गंगा है घड़ा में बाल्टी में, उसमें सब संभव नहीं। ऐसे ही परमात्मा की उपाधि माया है, बिल्कुल शुद्ध सत्व प्रधान है, और जीवात्मा की उपाधि अविद्या है, मलिन सत्व या अंतःकरण मान लो समझने के लिए। तो हमारी उपाधि छोटी होने से हम परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न मतलब हाँ बिल्कुल ठीक, सीमित है, परिच्छिन्न का अर्थ बटा भी कर सकते, सीमित है मतलब हम ससीम है। ईश्वर हो गया असीम, हम हो गए ससीम, अंतःकरण की उपाधि से हम घिर गए। तो जीव हो गया। कहते एक राजा वेदांत सुनने जाता था तो बार बार महात्मा जी कहते तू वही तू है जो वह परमात्मा तत्त्वमसि। उसने कहा महाराज ऐसे कैसे होगा, सुनते सुनते साल भर बीत गए, आप कहते वही जो ब्रह्म है वही तू है तत्त्वमसि, ऐसा कैसे हो सकता। आप बताए मैं राजा हूं और हमारी ये सब प्रजा है दास, क्या राजा कभी दास हो सकता? राजा दास नहीं हो सकता, दास राजा नहीं बन सकता, दोनों में कितना भारी अंतर। फिर वह तो सर्वज्ञ चेतन अनंत ऐश्वर्य गुण युक्त है, हमारे में कोई ऐश्वर्य गुण नहीं, तो भला मैं वह ब्रह्म कैसे हो सकता। तो युक्ति से समझाए महात्मा जी, बोले अच्छी बात है, गर्मी का दिन है, प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो फिर सच्चा करेंगे। परमात्मा ने शर्त रखी पानी हमको दूसरा नहीं पीता हूं, बिल्कुल गंगा जी पीना है। बोला भी लाया, कमंडल ले गया और भरकर ले आया, कह लीजिए महाराज शुद्ध गंगा जी है, बिल्कुल शुद्ध गंगा जी। बोली गंगा है? बोले हाँ। बोला ये गंगा नहीं हो सकती। राजा ने कहा मैं अपने हाथों से ला रहा हूं महाराज, बिल्कुल अंदर जाके लाया, बिल्कुल विशुद्ध गंगा है। महात्मा ने कहा बताओ गंगा में तो नाव चलती है, लोग नहाते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां होती है, मगरमच्छ होते, इसमें तो कुछ भी नहीं, ये गंगा कैसे? राजा ने कहा महाराज आप भी मजाक करते हैं, है तो गंगा ही, अब उतना बड़ी उपाधि इसकी छोटी है, इसमें नाव कहां से आएगी? तब महात्मा ने कहा बस वही तो है तू, जैसे कि ये छोटी उपाधि कमंडल है तो कमंडल में नाव नहीं चल सकती है, लोग तैर नहीं सकते हैं, पर है गंगा ही। ऐसे तेरी उपाधि छोटी अंतःकरण है, परंतु इस छोटे अंतःकरण से तू छोटा नहीं हो गया, जैसे कि कमंडल के छोटा होने से या गोल मटोल होने से काला होने से गंगा जल में किसी प्रकार का कोई बैगुन नहीं आता, बैगुन मतलब दोष नहीं आता, कमंडल के काले पने से काला नहीं होगा, नहीं कमंडल के परिच्छिन्नता से गंगा में परिच्छिन्नता आती। ऐसे ही अंतःकरण की छोटी उपाधि है, इस उपाधि के कारण से हमें परिच्छिन्नता की अनुभूति होती, पर आप भी अपरिच्छिन्न है, जो ब्रह्म है वही तुम हो। तो वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की उपाधि बड़ी है माया और हमारी उपाधि छोटी अविद्या अंतःकरण। परंतु जब दोनों का शोधन करें, अंतःकरण उपाधि को हटाएं तो कुटस्थ आत्मा, माया उपाधि को हटाएंगे तो वह चैतन्य बचेगा, तो चैतन्य चैतन्य दोनों एक है। तो जहां पर एकता का प्रतिपादन है वहां पर उपाधि को हटा करके, जब तक अंतःकरण उपाधि है माया उपाधि है तब तक जीव ईश्वर एक नहीं हो सकते। अमीर आदमी का जो अमीर पना उपाधि है धन धान्य महन महल समृद्धि, और गरीब की उपाधि जो झोपड़ पट्टी है, वो झोपड़ी से निकलेगा और महल से निकलेगा, दोनों एक जैसे आदमी आदमी, अनजान आदमी दोनों को आदमी समझेगा। ऐसे ही जब माया उपाधि ईश्वर की हटेगी और जीव की अविद्या उपाधि, दोनों एक ही है, तो सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व उपाधि हटा दे हम, हमारा उपाधि है अल्पज्ञत्व, ईश्वर की उपाधि सर्वज्ञत्व। तो सर्वज्ञ चेतन अल्पज्ञ चेतन, सर्वज्ञ हटा दो अल्पज्ञ हटा दो, चेतन चेतन एक, जहां एकता करते तत्त्वमसि आदि में वहां सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व को हटाकर एकता की जाती, तो दोनों एक हो जाते। इसी बात को लेकर रहे कि वास्तव में तत्त्वमसी वही तुम हो। इस संसार में हम लोग भटक गए हैं और खुद भटके हैं, किसी ने भटकाया नहीं। लोग कहते ना कि जो है वास्तव में हम भटके क्यों। जीवात्मा जब ब्रह्म स्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं है, तो अपने को ये इस प्रकार से विषयी क्यों मान लिया, संसारी क्यों मानता, फिर भटकता क्यों। ब्रह्म तो भटकता नहीं। जब ब्रह्म स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, तो संसार में क्यों मुग्ध हो रहा, लुब्ध हो रहा। तो वास्तव में वो लुब्ध मुग्ध नहीं होता। जल के हिलने से सूर्य में हलचल नहीं होती, जल के मालिन्य से सूर्य में मालिन्यता नहीं आती, और जल की स्वच्छता से सूर्य में स्वच्छता नहीं आती। उपाधि के धर्म उपाधि तक होते हैं, अधिष्ठान में नहीं पहुंचते। भले प्रतीति हो रही कि जलस्थ सूर्य में चांचल्य है, मालिन्य है, स्थिरता है, ये सब प्रतीति होती है, परंतु इन प्रतीतियों से उसमें कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं। ऐसी अविद्या कामना वासना की उपाधियों से भले थोड़ी देर के लिए प्रतीति होती हो कि हम मुग्ध हैं, हम लोभ हैं, हम क्रोध हैं, हम संसारी हैं, और कई बार होता है ज्ञानी पने का ईमान, हम ज्ञानी है, नारद जी को हुआ था ना, नारद जी तो बहाने हैं, हम लोग को भी होता रहता। थोड़ी सी साधना हम लोग करते हैं तो कुछ अनुभूतियां हो जाती, होती सबको कुछ अनुभूतियां हो गई, ध्यान में सूर्य की रोशनी देख ली, आंख बंद हुए, या कुछ देवता का दर्शन कर ली, ये सब सामान्य बात है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, किसी भी साधक को हो सकता है, बशर्ते एक नियम का पालन करे, जीवन में सत्य व्यवहार सत्य बदन, इतना ही सिर्फ हो न, और कुछ नहीं। चाहे भले जीवन में अन्य कर्म प्रारब्ध से होता हो, व्यविचार आदि कर्म, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जीवन में एक ही नियम, सत्य बदन सत्य व्यवहार, वाणी का सत्य, अंतःकरण में किसी प्रकार का कोई चालाकी न हो। तो थोड़ा भी 10-5 मिनट भी कुछ जब ध्यान करता है ना, तो जरूर उसको अनुभूति होती होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप हजार माला गुमाओ पर वाणी से झूठ बोलते हो, अंतःकरण में चालाकी, तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर कोई अनुभूति नहीं हो सकती। हजार माला भी घुमाए, गायत्री प्रचरण भी कर ले, पर वाणी में मतलब की सत्यता नहीं, और अंतःकरण में जो चालाकी जिसको बोलते आजकल, वह होगा तो नहीं होता। क्योंकि तो अंतःकरण के मालिन्य का सबसे बड़ा ये कारण है असत्य व्यवहार, असत्य बदन। तो थोड़ी सी अनुभूति होती तो हम लोगों को भ्रांति क्या हो जाती कि हम ज्ञानी हो गए, कि ज्ञानी पने का भी अभिमान है। ज्ञान स्वरूप आप हैं, आप सत स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, परंतु ज्ञानी नहीं। ज्ञानी का मतलब होता है ज्ञान गुण। श्रुति में बार बार आता है कि साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वो आंख थोड़ी यही देख ले हम लोग, कैवल्य नाम इसका है ना, और अंत में आएगा कैवल्यम अश्नुति, अंतिम मंत्र है कैवल्यम अश्नुति। तो कैवल्य का अर्थ यही होता है, कैवल्य मतलब केवलस्य भाव कैवल्यम, वहां कोई धर्म नहीं, कोई गुण नहीं, कोई क्रिया नहीं, उसी का नाम कैवल्य है। जब वह कैवल्य है, निर्गुण है, निर्धर्मक है, तो ज्ञान नामक धर्म भी नहीं रह सकता है, चित्त भी नहीं रह सकता, आनंदत्व भी नहीं रह सकता। आनंद स्वरूप भले हैं पर आप में आनंद पना नहीं। इंद्रियों से आनंद की अनुभूति होती, इसको मोटी भाषा में समझें कि जिस चीज की इंद्रियों के सन्निकर्ष अनुभव हो, वो समझो कि अनित्य है, चाहे कोई चीज हो। आंख से कुछ हमने देखा, आनंदानुभूति हुई, कान से हमने कुछ सुनी, आनंदानुभूति हुई, तो समझना वो दृश्य है, वो दृक नहीं है।